તારીખ 20/3/1999 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 579 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 860
પત્ર છે ફાગણવદ અમાસ છે ફાગણવદ અમાસ ચૈત્રવદ 8 ચૈત્રવદ 11 ચૈત્ર સુદ પૂનમ માં આવી ગયો ચૈત્ર સુદ પૂનમ એ આપણે તો વાંચી નહીં ચૈત્ર સુદ પૂનમ નો વાંચી નહીં ચૈત્ર સુદ છઠ નો પણ વાંચી નહીં
ચૈત્ર સુદ પૂનમ નો બાકી છે
જે તરણ તારણ બોધ સ્વરૂપ પરમાત્મા દેવ સાહેબજી શ્રી રાજચંદ્રભાઈ શ્રી રવજીભાઈ મુકામ મુંબઈ બંદર એવું સંબોધન કરે છે. એવી રીતે ભગવાનને સંબોધન કરે એવી રીતે પોતાથી 44 વર્ષે નાના એને એવી રીતે સંબોધન કરે છે. એ થોડા ઐતિહાસિક વાત છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી સૌરાષ્ટ્ર મેં મોરબી કે પાસ એક છોટા સા ગાંવ હૈ વહાં કરીબ 130 સાલ પહેલે હુએ થે. દેહાંત હો ગયા તો 1957 મેં તો 100 સાલ તો દેહાંત કા હો જાયેગા. 2057 મેં હુએ 98 સાલમાં દેહાંતમાં. ગાંધીજી કે સમકાલીન થે. ગાંધીજી જબ જબ જીવન મેં ઉલઝન મેં આતે થે તબ ઉનકો ગુરુ કે સ્થાન મેં રખ કરકે કુછ ઉનસે સલાહ વિચાર વિમર્શ કરતે થે ઓર કાફી અપને જીવન કથા મેં લિખા હૈ કે મેરે જીવન મેં અગર કોઈ અસર હૈ ગુરુ કે સ્થાન મેં તો એમથી હૈ. ગાંધીજી કે સાથ જો પત્ર વ્યવહાર ચલા હૈ વો ભી ઇસ ગ્રંથ મેં હૈ. કુછ એક પત્ર સે એસા લગતા હૈ કે ગાંધીજી જબ ડર્બન મેં થે દક્ષિણ આફ્રિકા મેં તો ઉસ જમાને મેં લંડન સે 12 કિલો હોકર કે આયે થે બેરિસ્ટર બન કે આયે થે. મુંબઈ મેં પ્રેક્ટિસ કરના શરૂ કિયા થા. પ્રેક્ટિસ ઉતની નહીં ચલી. ફિર કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની મેં લો કે એડવાઇઝર હો કરકે તો કંપની કે નોકરી મેં વો ડર્બન ગયે થે સર્વિસ કરને કે લીએ. વહાં ફિર વો પોલિટિક્સ મેં આ ગયે. વહાં જો બ્રિટિશરો કે સામને કાલે ગોરે કી જો લડાઈ થી તફસીલ લોગો કી ઉસમે વો अहिंसा की लड़ाई वहां लड़े। हथियार में तो ब्रिटिशरों को कोई पहुंचे ऐसी बात नहीं थी, तो हिंदुस्तान में भी अहिंसक लड़ाई उन्होंने की और वो प्रयोग उनको अफ्रीका में वो सफल हुए थे। अफ्रीका में जब वो सफल हुए तब तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको हम पादरी बना सकते हैं और भविष्य में आपकी योग्यता देख करके आप पोप भी बन सकते हैं, बहुत अच्छी योग्यता है आप में, ऐसी योग्यता बहुत कम मनुष्य में होती है, तो लड़ाई छोड़ दें और क्रिश्चियन हो जाए, तो टेम्पटेशन दिया था ऐसा। उस वक्त गांधी जी थोड़े उलझन में आ गए, क्या करें, क्रिश्चियन बनना या नहीं बनना। उस वक्त उन्होंने चिट्ठी लिखा है श्रीमद जी को, तो उन्होंने बचा लिया क्रिश्चियन बनने में, अगर बचा लिया तो श्रीमद जी ने बचा लिया। आगे भी डरबन से जो पत्र व्यवहार चले हैं वो पत्र में भी उन्होंने काफ़ी बौद्धिक स्तर पे बहुत इंटेलिजेंटली काफ़ी प्रश्न किए, करीब 40 प्रश्न किए हैं, ऐसे तो 27 है लेकिन एक में दो तीन प्रश्न भी हैं। 40 प्रश्न में दुनिया भर के प्रश्न पूछ लिए हैं, वैष्णव संप्रदाय के, मुसलमान संप्रदाय के, क्रिश्चियन संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के, अहिंसा के, जैन की कर्म की थियोरी के, जैन धर्म पर बहुत से प्रश्न पूछे हैं और वह जवाब भी उच्च मध्यस्थ रूप से दिए हैं उनको। कहने का आशय वो है, अब अगर कहने का आशय वो है कि हिंदुस्तान में गांधी जी एक बहुत बड़े महात्मा के रूप में जाने माने हैं, इनके भी गुरु थे तो कितने आगे होंगे। ये जो सुभाष भाई हैं तो उम्र में 44 साल बड़े थे, फिर भी इस तरह से उनको संबोधन करते हैं, पत्र लिखते हैं तो कि आप तो हमको तारने वाले हैं, खुद ज्ञान स्वरूप है हमारे, ये तो परमात्मा के स्थान में है और आपको हम बहुत प्रेम से पूजे स्थान में है। मोरबी से लिखने वाले आपके आज्ञांकित सेवक सौभाग का नमस्कार पढ़िएगा। मोरबी से चिट्ठी लिखा है, मैं तो साइला रहने वाले लेकिन कोई बिजनेस के हिसाब से मोरबी आते थे। सुभाष भाई कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे और वैसे शास्त्र के भी जानकार नहीं थे, फिर भी आत्मकल्याण के विषय में इनकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी, इसका कारण उनको खुद को आत्मकल्याण करने की भावना सही थी और कोई भी मनुष्य को आत्मकल्याण के अंतर की सही भावना होती है तो उनको अपना आत्मकल्याण करने में मति सरल रूप से अच्छी तरह काम करती है, वरना क्या करें क्या नहीं करें इसकी सूझ नहीं आती है। तो सुभाष भाई एक ऐसी व्यक्ति है कि आत्मकल्याण के विषय में बिना शास्त्र पढ़े भी सूझबूझ बहुत अच्छी थी, और इस सूझ के वसात उसने श्रीमद जी को पहचाना था एक ज्ञानी के रूप में, और काफी इनके पीछे लगे हुए रहते थे। इसलिए रोजाना करीब वो चिट्ठी लिखते, आपका कृपा पत्र रविवार का लिखा हुआ कल ही मिला है, फागुन वद अमास पहला इमने कोई पत्र लिखो था, ये मिले थे लेकिन फागुन वद सातम नंबर अलबैनो था। रविवार फागुन वद सातम ने रविवार फागुन वद पांचम पछी ना थे इको तेर पछी ना इको तेर शनिवार ना माना थे, जिसमें अपूर्व वाणी से विगत विगत मैंने डिटेल जो लिखी है यह पढ़ करके जीव को मैंने मेरे को बहुत ही आनंद हुआ है, और वही चिट्ठी पढ़ते हुए मन में ऐसा हो आता है कि इस लय रूप संसार में से कैसे छूटे, कब छूटे। लय रूप मैंने अग्नि की शिखा होती है धाल, गर्म बहुत लगती है, ऐसे संसार में से कब छूटे। पढ़कर के ऐसा भाव होता है कि ऐसे संसार में से जो अग्नि रूप है, अग्नि के ताप रूप है संसार, उसमें से कब छूटे। पुनः उसका जो रहस्य और मर्म को विचार करते हैं तो अद्भुत और आश्चर्यकारिक वाणी लगती है। आपकी जो वाणी है उसमें जो रहस्य है आत्मकल्याण का, रहस्य मैंने सीक्रेट, शब्द तो शब्द है लेकिन शब्द में भी कुछ रहस्य होता है, वो रहस्य को पढ़ करके और विचार करके बहुत अद्भुत और आश्चर्यकारक हमको लगता है। ऐसी वाणी का बोध बार बार करने की कृपा कीजिएगा। प्रश्न के स्पष्टीकरण के विषय में लिखा यह तो ठीक नहीं है, लिखेगा कि आप मिलेंगे जब बताएंगे तो आपने ठीक ही लिखा है। प्रत्यक्ष समागम योग में आप कृपा कृपा करके बताने बताइएगा, और विशेष रूप से ऐसे जानने का विचार होता है, और विशेष करके ये सब जानने का विचार रहा करता है, जो भी प्रश्न लिखे हैं उस विषय में जानने का विचार रहा करता है। घी की दुकान के विषय में धीरज से विचार करके करने के विषय में लिखा तो उतावल नहीं है, तो जरा धीरज से विचार करने घीनी दुकान करो तो उतावल नहीं, विचार करने शांति थी स्वरूप अच्छा। घीनी दुकान विषय धीरज से विचार करीने करवा विषय लिखू तो उतावल नहीं, હજુ કરવા વિચાર થાય તો પણ વૈશાખ સુદ બીજ પછી પહોંચી શકાય તેમ છે। માનો કે કરને કા વિચાર હો ગયા તો ભી વૈશાખ સુદ બીજ કે બાદ करने के लिए समर्थ होंगे, पहुँचेंगे, इसके पहला उसकी पहुँच नहीं होगी। कारण के लालचन ने सायला खाता में माँ से एक बहनों काम छे। મણીની દલાલી વિશે જો મણી લખે છે તેમ બંદોબસ્ત થતો હોય અને આપના ધ્યાનમાં આવતો હોય તો પછી તેમાં કાંઈ હું ત્યાં આવ્યા પછી વિચાર કરી કરવા જેવું નથી। તો એમ કે જો દો તીન લડકે છે ઉસ વિશે મેં લિખતે હૈ કે અપના જો સાયલા મેં નેટિવ પ્લેસ હૈ વહાં એક દો મહિને કા કામ હૈ। मणिलाल को दलाली के विषय में जो कोई व्यवस्था वहाँ होती है तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, उसमें मेरे को कोई विचार करना नहीं है। सिद्धांत में सांभ्या में चारे गति में समकित प्राप्त थाय छे एम बात सांभळी छे। अब क्या है कि शास्त्र सिद्धांत में ऐसा सुना है, सिद्धांत के विषय में ऐसा हमने सुना है कि सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो सकता है, ऐसा हमने सुना है। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य देह श्रेष्ठ क्यों गिनने में आता है? જો એમ હોય તો પછી મનુષ્ય દેહને શ્રેષ્ઠ શું કરવા ગણવો? ચારે ગતિમાં સમ્યક દર્શન થાય છે। કદાપી મનુષ્ય અવતાર મેં જિસકો જિસકો સમ્યક દર્શન થા ઓર યહ જીવ દૂસરી ગતિ મેં જાતા હૈ તો સંકિત હોતા હૈ ऐसा अनुभव में आता है। पोते पोता ने समझण प्रमाणे लखे छे के वा समकिती जीव बीजी गति में जाए ने पाछो त्याने समकित थाय एम लागे छे, एम अनुभव में आवे छे। परंतु पूर्व में मैंने भूतकाल में समकित प्राप्त नहीं हुआ हो और देव नारक और त्रियंज देव नारक और त्रियंत मानव सर्वसंकित पामे वो कैसे बन सकता है? पहले पूर्वभव में संकित नहीं हुआ हो तो फिर अन्य गति में कैसे संकित हो सकता है? मनुष्य बिना बीजी त्रण गति में साधन नहीं। मनुष्य में क्या है, धार्मिक संप्रदाय है, देवगति में कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं, पशु पक्षी में कोई तिर्यंज गति में भी धार्मिक संप्रदाय नहीं, नरक में भी नहीं। तो वहाँ तो कोई साधन है ही नहीं धर्म का, ऐसा फिर वहाँ समीक दर्शन कैसे होता है? वो प्रश्न उठाया है। मनुष्य सिवा दूसरी तीन गति में तो साधन नहीं है, अने मनुष्य अवतार में पण केटली बधी समझण आवे त्यारे संकित कहेवाय छे। मनुष्य गति में भी बहुत ठीक समझ होती है तभी सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो बीजी त्रण गति में एवो जोग क्यांथी बने? फिर तीन गति में तो संप्रदाय धर्म का संप्रदाय नहीं है तो सम्यक दर्शन का योग कैसे बनता है? આમ વિચાર કરતા અટપટું લાગે છે પણ સાધુ વગેરે સિદ્ધાંતમાં છે એમ કહે છે એટલે પરાણે કબૂલ કરવું પડે તો તે વાત માનવા યોગ્ય છે? એસે વિચાર કરને પર તો વાત અટપટી લગતી હૈ, ફિર ભી સાધુ લોગ કહેતે હૈ કે સિદ્ધાંત મેં વો બાત હૈ तो स्वीकार करना पड़ता है। वो बात ठीक है क्या? जबरन स्वीकार करना पड़ता है, समझ में तो नहीं बैठता है, जबरदस्ती से स्वीकार करना पड़े तो वो बात ठीक है क्या? कि कहीं जे कहे छे ते मैं समझवा फिर था इसे और वो लोग कहते हैं और मैं नहीं समझ सकता हूँ, ऐसी कोई बात है तो बता देना, ऐसा प्रश्न उठाया। નાની મહારાજાએ તો જે કહ્યું હશે તે સમજીને કહ્યું હશે, એ તો ખાતરી છે. અગર કિસી જ્ઞાનીને કહા હોગા, જ્ઞાની મહારાજને ક્યાં હોગા, તો વો તો સમજ કરકે ક્યાં હોગા, ઉસમે હમકો શંકા નહીં હૈ. જ્ઞાની કે પ્રતિ તો પૂરા વિશ્વાસ હૈ. બાકી હાલના જાણવા વાળાના સમજ્યા ફેર થતો હોય તો લખી જણાવશે. અને અભી કે જો સાધુ લોગ હૈ વો જ્ઞાની નહીં હૈ, ઇસકે માય બાતો હૈ. તો એ જો શાસ્ત્ર કે જાણને વાલે હૈ ઉસમે કોઈ ઉન લોગોમાં ફરક હોતા હો તો હમકો બતા દીજિએ. કોઈ સહી બાત કર રહે હૈ, કોઈ ગલત બાત કર રહે હૈ, બતા દેના. એના ઉપર વિશ્વાસ નથી. અત્યારના બતાવવા વાળા ઉપર એમને વિશ્વાસ નથી. કૃપાળુ દેવને કહ્યું, તમે વાત કરો તો બરાબર, તમારી વાત ઉપર વિશ્વાસ આવે. આમ જુદા પાડે છે. મારો વિચાર સાયલે ગયા પછી એક વખત આપના દર્શન કરવા ખચિત આવવાનો છે. અને ગોસળિયાનો પણ વિચાર મને તેને જણાવ્યો હતો. મેરે વિચાર સાયલા જાને કે બાદ આપકા દર્શન કરને કે લીએ બમ્બઈ આને કા હૈ. ઓર ઇસકે મિત્ર જો થા ગોસલિયા, ઉનકા ભી વિચાર એસા હી બતાયા. પણ હવે તેનું થાય તે ખરું, ફિર ભી ઉસકા તો કોઈ નિશ્ચિત નહીં કહે સકતે. જો તે આવશે તો બંને જણા સાથે આવશો, અગર વો આયેંગે તો દોનો સાથે આયેંગે. અહીં હજુ દિવસ 8 થાય તો થાય, ક્યાં મોરબીમાં 8 દિવસ કદાચ 8 દિન રૂકના હોગા. ગાડલા વગેરે કંઈ મોકલવા જેવું હશે તો વવાણીએ મોકલીશ. અને કોના ખાતે પૈસા માંડવા લખશો તો માંડીશ, તો તેના પૈસા ખાતે માંડવા લખશો તો માંડીશ. એટલે એમ કે આપને ત્યાં વવાણીયા ખાડલા મોકલીશ અને એ પૈસા ખાતે ઉધારવાના લખશો તો હું ઉધારી નાખીશ. હવે ઘણું કરીને નામે લખને કી બાત હૈ, પૈસા ગદ્દે મોક ભેજ દેંગે આપકે વહાં ઓર પૈસા આપકે નામે હમ લિખેંગે તો લિખ દેંગે. ગુરુવારે ગામડામાં જવા વિચાર છે. પત્ર લિખતે મંગળવાર કો, ગુરુવાર કો કોઈ છોટે ગાંવ મેં જાના હૈ વો ભી લિખ દિયા હૈ. જો ભી વિકલ્પ આતા હૈ બાત પૂરી લિખ દેતે. જાવું તો આજ હતો પણ વાહનનો યોગ જોગ બન્યો નહીં, વળી અમાસ હતી તેથી ગયો નથી. અમાસને દિવસે રજા પાડે ને, પહેલાં રવિવારે નહોતા રજા પાડતા, પુનઃ અમાસને રજા પાડતા. એટલે આજ જાને કા વિચાર થા લેકિન કોઈ વ્હીકલ નહીં મિલે તો સાધન નહીં મિલા. ગાડું વાગડું કંઈ ઘોડા ગાડી ગાડું એવું ન મળ્યું હોય તો એ નથી ગયા. બધી અમાસ હતો એટલે માંડી વાળી ગામડામાં જવાનો વિચાર છે. જવું તો આજે હતું એમ ગામડામાં, એટલે કોઈ નાનું ગામ હોય ને બાજુમાં ત્યાં કોઈ વેપાર સંઘનું કામ હશે એ હિસાબે. મારાવતી શ્રી રેવાશંકરભાઈને પ્રણામ કહેશો, કૃપા કરી બોધ આપશો. પરમાદી સદાય દુઃખી, અપરમાદી સુખી એમ લખ્યું તો પરમાદી ને અપરમાદી એ શું? 569માં લખ્યું છે ને, પરમાદી સદાય દુઃખી, પરમાદી ને સદાય ભાઈ છે. 569માં પત્ર છે. એ કંઈ પરમાદી ને અપરમાદી હું સમજ્યો નહીં એમ કે એનો પ્રશ્ન. જો અજ્ઞાન હો થાત તો પ્રમાદ કહો તો પ્રમાદ કેમ કહો? જો અજ્ઞાન થાત એટલે મિથ્યાત્માને પ્રમાદ કહો તો પ્રમાદ કેમ કે કહો છો? તેથી પ્રમાદનો અર્થ જુદો હોવો જોઈએ. તો એ પ્રમાદ શું છે? અજ્ઞાન કો મિથ્યાત્મ કો પરમાદ કહેતે હૈ યા કોઈ દૂસરી બાત હૈ? પરમાદ સમજ મેં નહીં આતા. આગળ એક મણીનો અને એક લલ્લુનો બીડો છે તે આપી દેશો. પછી 589મો પત્ર છે એ આપણે અત્યારે લેવાનો છે. પરમ સ્નેહી શ્રી સૌભાગ્ય પ્રત્યે શ્રી સાયલા, મોરબીથી લખેલો કાગળ એક પહોંચ્યો છે. હું જો પત્ર પડા રવિવારે અત્રે એક પત્તું મોરબી લખ્યું છે તે તમને સાયલે મળ્યું હશે. એટલે સાયલ આવી ગયા છે, મોરબીથી તમને મુસ્તાક સાયલા પહોંચાડી દીધું છે. શ્રી ડુંગર સાથે આ તરફ આવવાનો વિચાર રાખ્યો છે. તે વિચાર પ્રમાણે આવવામાં શ્રી ડુંગરે કાંઈ પણ વિક્ષેપ ન કરવો યોગ્ય છે, કેમ કે અત્રે મને વિશેષ ઉપાધિ હાલ તરત નહીં રહે એવું સંભવે છે. ક્યાં લખા કે ડુંગર ભાઈ કે સાથ આપ બંબઈ આને કા વિચાર રખતે હો તો ઠીક હૈ, કોઈ સંક્ષેપ યાને કોઈ સંકોચ મત રખીએ, આપ દોનો આ સકતે હૈ ઇન દિનો મેં મેરે કો અથડા. દિવસ તથા રાતનો ઘણો ભાગ નિવૃત્તિમાં ગાળવો હોય તો મારાથી તેમ બની શકવા હાલ સંભવ છે. દિન મેં ભી કુછ ટાઈમ મિલેગા ઓર રાત કો ભી ટાઈમ મિલેગા નિવૃત્તિ મેં સત્સંગ કરને કે લીએ. અભી એસા એસી પરિસ્થિતિ હૈ. ગુજરાતી બધા એની પાસે છે ને, એટલે સીધું હિન્દી કરો તો વાંધો નહીં. આ માટે છે ને
ગુજરાત.
કઈ તારીખ આના પછી લઈ જશે, કારણ કે આ ચૈત્ર સુદ પૂનમ છે ને, એટલે 3 દિવસમાં થઈ જશે. 3 દિવસ પહેલા 3 દિવસમાં કદાચ ન મળે એનો જવાબ. ચૈત્ર બધા આઠમમાં કદાચ આપે. પરમ પુરુષ કી આજ્ઞા કા નિર્વહન કરને કે લીએ ઓર બહુત જીવો કે હિત કે લીએ આજીવિકા આદિ સંબંધી આપ જો કુછ લિખતે હો અથવા પૂછતે હો ઉસમેં મૌન જૈસે વર્તને કા હોતા હૈ ઉસ વક્ત દૂસરા કોઈ હેતુ નહીં હૈ અતો મેરા એસા એસે કે લીએ ચિત્ત મેં અવિક્ષેપતા અવિક્ષેપતા મેં ક્ષોભ અક્ષોભ રખેગા ઓર અત્યંત પ્રયોજન કે બિના અથવા મેરી ઈચ્છા કો જાને બિના યહ પ્રકાર મેરે પ્રતિ લિખને કા યા પૂછને કા નહીં હોવે તો અચ્છા હૈ. ક્યા કહેતે હૈ કે આપ અપની આજીવિકા કે વિષય મેં જો કુછ ભી લિખતે હૈ ઓર પૂછતે હૈ હમ જવાબ નહીં દેતે, મૌન રહેતે હૈ. इसके पीछे बहुत जीवों का हित का दृष्टिकोण है हमारा और परम पुरुष ऐसे तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का निर्वहन का भी कारण है. भगवान की ऐसी आज्ञा है. इसका मतलब क्या हुआ कि सांसारिक विषय में आप हमको बीच में मत लाइए, અપના સંસારિક કામ આપ સંભાળીએ. જ્ઞાની કો સંસારિક વિષય મેં मुमुक्षु के सांसारिक विषय में माथा नहीं लगाना चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। और इसमें बहुत जीवों का हित का भी दृष्टिकोण है, क्योंकि दूसरों को भी वो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों कर, क्या जरूरत है, सांसारिक विषय में क्यों जुड़ते हैं, वो ज्ञानी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे विषय में अत्यंत प्रयोजन बिना बहुत कुछ तकलीफ हो जाए तो दूसरी बात है, मेरी इच्छा को समझे बिना हम इस प्रकार के पत्र में कोई बात नहीं लिखेंगे। क्योंकि आपको और हमको ऐसी स्थिति में ऐसी हालत में वर्तन करना विशेष जरूरी है, हम दोनों को ऐसा ही वर्तन करना चाहिए। तकलीफ हो लेकिन उसमें भय नहीं होना चाहिए, निर्भयता से रहना चाहिए, परिणाम बिगड़े नहीं ऐसा होना चाहिए, भले ही तकलीफ हो प्रतिकूलता हो तो भी। मेरे पर की कृपा से इतनी बात चित्त में दृढ़ कर कीजिए, दृढ़ करना चाहे तो बन सके ऐसी है। आम आत्मा तुम्हारी दृढ़ता नहीं रहती है, तो तुम्हें जो करवा धारो तो दृढ़ता रही विषय है, ये दृढ़ता करो तो मारा ऊपर में कृपा हो गई। केवी रीते मीठी भाषा में ठप्पो आपे, कोई वक्त कड़क भाषा में भी ठप्पो लखे है, तो कोई वक्त मीठी भाषा में पर ठप्पो लखे, ये मारा ऊपर में कृपा गणा है। बीजा ने पण एवो दाखलो बेसे, बीजा एनु अनुसरण करे, अनुकरण करे एटले બીજાને નુકસાન થાય, હા પછી કોઈ તો આરંભ સમારંભમાં આવી જાય, આરંભ સમારંભમાં આવી જાય, મારે કૃપા થશે આવું નહીં લખો એટલી, હા સકામતા જ્યાં સકામતા છે ત્યાં મલિનતા છે। जैन सिद्धांत को छोड़ करके वो सकामता से ही धर्म साधन करते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, वैसा करेंगे तो ऐसा, इसको मानेंगे तो इसका फल मिलेगा, इसको मानेंगे तो इसका फल मिलेगा, ये धर्म नहीं रहा, ये हो गया बिजनेस, बिजनेस हो गया। इसका एक जोक है, हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, कितना तेल चढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं कटोरी में, थोड़ा बहुत कटोरी में लेके जाते हैं और मांगते हैं कि हमको काफी मिले, मैंने ज्यादा मिले तो पूरा तेल का डिब्बा ले खरीद सकेंगे, आपको ज्यादा तेल चढ़ाएंगे, आपको कटोरी में थोड़ा और ज्यादा चढ़ाएंगे, अब हमको तेल का डिब्बा दे दीजिए। हनुमान जी कहता है कि अगर ऐसी बात होती है तो मैं तेल के डिब्बे में मैं ही डुबकी नहीं लगाता क्या, तुम्हारी कटोरी के सामने अगर मुझे तेल का डिब्बा देना है तो मैं ही तेल में तो नाना मुझे पसंद है, मेरे पर तो तेल चढ़ाते हैं, मैं तेल के डिब्बे में ही डुबकी लगाऊंगा, डुबकी दूंगा मैं, तो मैं दे सकता हूँ, तो मेरे को तो तेल में नाना पसंद है, मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा, तुमको क्यों, ऐसी हालत हास्यास्पद बातें बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग धर्म के विषय में करते हैं, जो हास्यास्पद होती है, ऐसी बात है। पूजा भक्ति निष्काम होना चाहिए, और ऐसे भी अन्य मत में कुछ लोग हुए हैं, महात्मा लोग हुए, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीराबाई थे, तो निष्काम भक्ति करते थे, अपेक्षा नहीं रखते थे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, हमारे प्रतिकूलता दूर हो जाए, अनुकूलता हो जाए। ये तो बात हो गई लेन देन की, जो दुकानदारी में होती है। दुकानदारी अलग चीज है, संसार में धर्म अलग चीज है, दोनों एक सी बात नहीं होती। वो क्या था ना, तो कभी कभी बहुत अकुलाहट में आ जाते थे तो लिख देते थे, वो इनकी कमजोरी थी। तो इस विषय में सुभाष भाई को कभी वो थपथपा भी लिखते थे। अब बात वो है कि सुभाष भाई की हमको कमजोरी देखना है या सुभाष भाई की योग्यता का दर्शन हमको करना है, हमको क्या करना है, प्रश्न हमको जो उठ रहा है। इसलिए कि वो इनको सकामता में लाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो निष्काम भाव से ही हमारे साथ रहे, हमारे प्रति सकामता की भावना नहीं रखे, ऐसा वो चाहते थे। और उसमें उसका आत्मलाभ था, अगर वो सकामता में आ जाते तो उसको आत्मलाभ नहीं होता। तो उनके हित के दृष्टिकोण से वो इसे बात करते थे। वो चाहते थे तो पैसा दे सकते थे, उन्होंने कभी दिया नहीं, क्यों, तो उसको उसमें नुकसान होने वाला था, इसलिए उनको भी हो जाता, उनके परिवार वालों को ज्यादा हो जाता, क्योंकि वो तो सब अपेक्षा में आ जाते, वो ज्यादा नुकसान हो जाता। हाँ, इसलिए उन्होंने पारमार्थिक हेतु से जो कुछ किया है वो सही किया है। बाकी किसी भी प्रकार से कभी भी भिन्न भाव की बुद्धि से मौनपना धारण करना हमको सूझे ऐसा संभवित नहीं है, ऐसा निश्चय रखिएगा। मैंने आप अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आपका काम कैसे करूँ, वो बात नहीं है। आपके साथ अभिन्न भाव है, अभिन्न भाव कब होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अभिन्न भाव होता है। गिनती तो प्रेम वाले गिनती नहीं करते, जैसे माँ अपने संतान के प्रति गिनती नहीं करती को कितना रोटी खाता है, कोई ज्यादा खाता है तो वो खुश होती है कि चलो इसको भूख अच्छी है, ज्यादा खाएगा तो बलवान बनेगा, मेहमान की तो रोटी गिनेगा, देखो हम लोग तो 5-7 रोटी में पेट भरते हैं, उसको तो 20 रोटी में भी पेट नहीं भरता है, मेहमान की गिन, तो मेहमान का आदर सत्कार भी ज्यादा करता है। हलवा लड्डू मेहमान को खिलाएगा, घर वाले को इतना नहीं खिलाता जितना जितना मेहमान को खिलाता है। फिर भी अपना परायापन में बहुत अंतर है, मेहमान में परायापन है और अपने में अपना अपनापन है, तो वहाँ हिसाब किताब नहीं होता। हिसाब किताब होता है वो भिन्न भाव हो गया, और प्रेम से जहाँ हिसाब किताब नहीं होता है वो अभिन्न भाव हो गया। तो कहते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार से आपके प्रति भिन्न भाव के अभिप्राय से, बुद्धि से मैंने अभिप्राय से, हम मौनपना धारण कर लेते हैं, जवाब नहीं देते, ऐसा हमको कभी विकल्प भी आए, सूर्य में विकल्प भी आए, ऐसा संभवित नहीं है। आप ऐसा निश्चय रखना, आपके प्रति बहुत प्रेम है, कोई भिन्न भाव नहीं है। इतना लिखना भी ठीक नहीं लगता है, तो आप तो समझते ही हमारे प्रेम को, समझाने चीज नहीं होती, वो तो अनुभव करने की चीज होती है। इसलिए इतना भी लिखना वो ठीक नहीं लगता, तथापि स्मृतिमा विशेषता होने के लिए लिखा है, आप भूल नहीं जाए, विस्मरण नहीं हो जाए, इसलिए लिखा है। बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आने का विचार करके मैंने निश्चय करके मिति मिति मैंने डेट लिखिएगा। जो कुछ पूछना करने का हो, ये समागम में, प्रत्यक्ष समागम में पूछने में आए, तो कितने उत्तर दे सकते हैं, हाल पर द्वारा ज़्यादा लिखने का बन सकता नहीं है। टपाल मैंने पोस्ट का समय बीत जाने से यह पत्र पूरा कर दिया है, लेकिन ख्याल ऐसे कहते हैं मैं टपाल निकले से एक दिवस में फर्क पड़ जाए ना। इसलिए श्री डूंगर को प्रणाम कीजिएगा और हमारे प्रति लौकिक दृष्टि रख करके आने के विचार में कुछ भी शिथिलता नहीं करने का है, इतनी विनती कीजिएगा। वो कोई संकोच मत रखें, लौकिक दृष्टि से कोई अनजानपना है या इतना संबंध नहीं है, हम कैसे जाएं, कैसे ठहरे वहाँ, कैसे रहेंगे, वो कोई रखने की जरूरत नहीं है। पारमार्थिक संबंध में हम ऐसा कुछ हमको कोई गिनना होता नहीं है। आत्मा सौथी अत्यंत प्रत्यक्ष छे, एवो परम पुरुषे करेलो निश्चय, ते पण अत्यंत प्रत्यक्ष छे, एज विनंती। सारे पत्र में ये वचन है, बहुत पावरफुल बात लिखी है। आत्मा मैंने आत्म स्वभाव, आत्म स्वरूप, मूल आत्मस्वरूप, अत्यंत प्रत्यक्ष मैंने संपूर्ण प्रत्यक्ष है, बेहद प्रत्यक्ष है, असीम प्रत्यक्ष है, जिसकी प्रत्यक्षता की भी कोई हद नहीं है, इतना प्रत्यक्ष है, मूल स्वरूप है। ऐसा परम पुरुष ने जो निश्चय किया है वो भी हमको अत्यंत प्रत्यक्ष है, इसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव है, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है इसका। परम पुरुष तीर्थंकर आदि ने जो भी निश्चय किया है वो हमको प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष है, माने हमको आत्मा का साक्षात्कार बताता है, हमारे परम स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष तौर से अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मा संपूर्ण प्रत्यक्ष है, बेहद प्रत्यक्ष है, वो बात हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष तौर से अनुभव गोचर हो रही है। तो ये जो प्रत्यक्षता है, वो तो सिर्फ विचार का विषय नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष होता है तो ये ऐसे तो अनुभव का विषय है, फिर भी उस विषय में थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण है। तो ऐसा है कि केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष माना गया है, अब सकल प्रत्यक्ष को, संपूर्ण प्रत्यक्ष को, अत्यंत बेहद प्रत्यक्ष को, इसका कोई हद नहीं है। वो प्रत्यक्षता आई कहाँ से? अगर स्वरूप में ऐसी प्रत्यक्षता नहीं होती, जैसे केवल ज्ञान स्वरूप में नहीं होता तो पर्याय में होता नहीं, वैसे केवल ज्ञान की प्रत्यक्षता भी स्वरूप में नहीं होती सहज प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं होता, स्वभाव से भी सहज प्रत्यक्ष नहीं होता, तो केवल ज्ञान में प्रत्यक्षता प्रकट नहीं होती। इसलिए आत्मा बेहद प्रत्यक्ष है, ऐसा न्याय से युक्ति से सिद्ध होता है। अनुभव से तो वेदन प्रत्यक्षता से स्वरूप की प्रत्यक्षता अनुभव गोचर हो सकती है। जो ज्ञान वेदन है, ज्ञान सामान्य में जो समय सार में विषय चला, कल अपने को कल के स्वाध्याय में जो विषय चला, उन पांचवा बोलूंगा। ऐसे सकल विशेषों में एक साधारण संवेदन रूप स्वभाव है, ऐसा ही वेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रकट सभी जीवों का अनुभूति स्वरूप आत्मा है। मोह की मंदता होने से उसका भाव भाषण होता है और प्रत्यक्ष अंश से, अनुभव अंश से अनंत प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष स्वरूप को निश्चय कर सकते हैं। और उस निश्चय के कारण से उत्पन्न जो पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ वृद्धिगत होने से उसका अनुभव कर सकते हैं, तब प्रत्यक्ष होता है कि मेरा आत्मा अनंत प्रत्यक्ष है। इस तरह से उसकी प्रत्यक्षता अनुभव गोचर हो सकती है। सबसे आत्मा अत्यंत प्रत्यक्ष समाप्त है और दोनों का विषय एक है, दोनों का विषय एक है। सम्यक दृष्टि का जो विषय है वही केवल ज्ञान का विषय है, जो केवल ज्ञान का आत्मा का विषय वही सम्यक दृष्टि का अंदर का विषय है, स्वरूप ज्ञान का और प्रधान का। तो विषय एक है, विषय में अंतर है। सम्यक दृष्टि अल्पज्ञ है और जो अनियंत सिद्ध भगवान है वो सर्वज्ञ है, उतना अंतर है। उनकी दशा में अंतर है, दशा के विषय में कोई अंतर नहीं, ऐसी बात। दोनों अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, विषय एक सा है, विषय में अंतर है, ऐसी बात। यहाँ तक
Oh,